शांत विचारशील संगीत का हल्का सा स्पर्श जो धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला जाता है।
ग्रंथसार में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ साहित्य जगत में धूम मचाई बल्कि दिलों पर भी राज किया। मैं बात कर रही हूँ माइकल ओंडाची के द इंग्लिश पेशेंट के।
हाँ बिल्कुल, एक कमाल की किताब है ये। और ओंडाची, उनका अंदाज ही निराला है। श्रीलंकाई मूल के फिर कनाडा में बसे, उनकी भाषा में ना एक काव्यात्मकता है।
सही कहा, वो सीधी सीधी कहानी नहीं कहते, जैसे यादें होती है ना बिखरी हुई टुकड़ों में, वैसे ही।
बिल्कुल, और द इंग्लिश पेशेंट तो इसका बेहतरीन नमूना है। 1992 में बुकर प्राइज मिला इसे और फिर 2018 में गोल्डन बुकर भी। और फिल्म तो खैर सबने देखी होगी।
हाँ, फिल्म भी बहुत मशहूर हुई। आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में जाएंगे, इसकी कहानी, इसके किरदार, उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव और जो मुख्य विषय ओंडाची उठाते हैं, पहचान, वफादारी, प्रेम और युद्ध की विडंबनाएं।
पृष्ठभूमि भी देखिए कितनी दिलचस्प है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा है, हम उत्तरी इटली में हैं, लेकिन कहानी हमें बार बार उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में भी ले जाती है।
और ओंडाची ने रिसर्च भी कमाल की है। किरदारों में असल जिंदगी की झलक है, जैसे लैस्लो अल्माशी या सिक्स सैनिक। ये युद्ध को बड़े देशों के नजरिए से नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों की आंखों से देखते हैं।
तो कहानी शुरू होती है इटली के एक विला में, विला सान गिरोलामो, बमबारी से टूटा फूटा वीरान सा,
जैसे कोई खंडर हो,
लेकिन फिर भी उसमें एक शांति है, अजीब सी शांति।
बिल्कुल, युद्ध और शांति के बीच जैसे कहीं फंसी हुई जगह।
चारों तरफ तबाही है लेकिन विला में एक ठहराव है।
और इसी वीराने में हमें मिलते हैं कहानी के चार मुख्य किरदार। सबसे पहले हाना, है ना?
हाँ हाना, एक कनाडाई नर्स, 20 साल की। युद्ध ने उससे बहुत कुछ छीना है, उसके पिता, उसका प्रेमी।
वो जैसे अंदर से टूट सी गई है, एक तरह का सुन्नापन है उसमें।
उसका सफर तो जैसे बाहर नहीं अंदर चल रहा है, यादों में धीरे धीरे खुलता है कि वो अंग्रेज नहीं हंगेरियन है, काउंट लैस्लो द अल्माशी,
एक रेगिस्तानी खोजकर्ता जिसका अतीत उफ जुनून और दुख से भरा है।
पहचान का ये सवाल कि हम कौन हैं, हमारा नाम, हमारी भाषा या हमारे अनुभव, अल्माशी का किरदार इसे बहुत गहरा बना देता है।
फिर आता है डेविड कारावेगियो।
हाँ कारावेगियो, हाना के परिवार का पुराना दोस्त, पहले चोर था फिर जंग में जासूस बन गया,
लेकिन पकड़ा गया और यातना सही उसने, उसके अंगूठे काट दिए गए।
अब मॉर्फिन का आदि है और वो विला सिर्फ हाना के लिए नहीं आया, उसकी नजर उस अंग्रेजी मरीज पर है।
उसे शक है कि शायद अल्माशी ही जिम्मेदार है उसके पकड़े जाने और उस यातना का। वो बदला चाहता है शायद,
या शायद सिर्फ सच जानना चाहता है। कहानी में ये धुंधलापन बना रहता है।
और चौथा किरदार किरपाल सिंह, किप।
किप ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सिख सैपर, बम निष्क्रिय करने वाला, बहुत ही सधा हुआ, शांत।
उसका किरदार एक बिल्कुल अलग नजरिया लाता है। वो पश्चिमी नहीं है, वो उस औपनिवेशिक पहचान के द्वंद से जूझ रहा है, एक हिंदुस्तानी अंग्रेजों की फौज में।
और उसका काम वीला के आसपास दबे बमों को डिफ्यूज करना, ये अपने आप में एक प्रतीक बन जाता है, जैसे वो सिर्फ जमीन के नीचे के खतरे नहीं, किरदारों के अंदर दबे आघातों को भी संभाल रहा हो।
बिल्कुल, तो ये चार लोग, चार टूटे हुए इंसान उस विला में एक साथ।
हाँ, एक अजीब सा अस्थाई सा समुदाय बन जाता है उनका। वो साथ खाते हैं, संगीत सुनते हैं, हैना उन्हें पढ़कर सुनाती है।
हैना और मरीज के बीच तो एक खास रिश्ता बन जाता है, देखभाल का, मॉर्फिन का और पढ़ने का, बहुत खामोश सा रिश्ता।
और कारावेगियो, वो अपनी कोशिश में लगा रहता है मरीज से उसकी कहानी उगलवाने की, धीरे धीरे परत दर परत।
और इसी माहौल में उन खंडरों के बीच हाना और किप के बीच कुछ पनपता है।
हाँ, एक बहुत ही कोमल सा प्रेम, जैसे मलबे पर कोई फूल खिल गया हो, उम्मीद की तरह।
दो अलग दुनियाओं से आए लोग, ये रिश्ता सरहदों के पार जाने की उम्मीद जगाता है।
लेकिन उसमें वो तनाव भी छुपा है, औपनिवेशिक इतिहास का, सांस्कृतिक फासलों का, क्या ये टिक पाएगा, ये सवाल बना रहता है।
कहानी यही नहीं रुकती, ओंडाची हमें अतीत में ले जाते हैं मरीज की यादों के जरिए।
हाँ, ये नॉन लीनियर नैरेटिव, कहानी आगे पीछे चलती है, 1945 का वीला और फिर 1930 का उत्तरी अफ्रीकी रेगिस्तान,
जहाँ अल्माशी एक खोजकर्ता था अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ, सहारा के नक्शे बना रहे थे वो लोग।
उस वक्त ये लोग जैसे राष्ट्रवाद से ऊपर थे, ज्ञान की खोज, रेगिस्तान को समझने का जुनून, वो रेगिस्तान, वो जैसे एक अलग ही दुनिया थी,
सीमाओं के बिना,
एक खुलापन लेकिन खतरनाक भी।
और वहीं अलमाशी की मुलाकात होती है कैथरीन क्लिफ्टन से और उसके पति जेफरी से।
कैथरीन बुद्धिमान, आकर्षक, और उसके बीच फौरन एक कनेक्शन बनता है।
हाँ, एक जबरदस्त कशिश, बौद्धिक भी शारीरिक भी। उनका इश्क बहुत गहरा, जुनून से भरा और छुपा हुआ।
वो रेगिस्तान की तरह ही था शायद, विशाल, नैतिक नियमों से परे।
लेकिन ऐसे जुनून का अंत अक्सर त्रासदी भरा होता है।
जेफरी को पता चल जाता है
और वो बदला लेने की सोचता है, ईर्ष्या में, गुस्से में।
वो अपना प्लेन, जिसमें कैथरीन भी है, जानबूझकर अलमाशी के ऊपर क्रैश करने की कोशिश करता है। एक तरह से हत्या और आत्महत्या,
भयानक। जेफरी तो मर जाता है।
हाँ,
लेकिन कैथरीन बुरी तरह घायल हो जाती है। अलमाशी उसे उठाता है और उस गुफा में ले जाता है, तैराकों की गुफा,
वादा करके कि वो मदद लेकर लौटेगा।
लेकिन यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है। वो 3 दिन रेगिस्तान में पैदल चलता है मदद के लिए,
और जब ब्रिटिश चौकी पहुंचता है
तो उसका हंगेरियन नाम, उसका लहजा, उन्हें शक होता है कि वो जासूस है। उसे बंदी बना लिया जाता है।
ये है राष्ट्रों के नियमों का क्रूर मजाक, इंसानियत पर शक हावी हो जाता है।
बिल्कुल। और उधर गुफा में कैथरीन अकेली रह जाती है। इंतजार करते करते वो मर जाती है। ये अलमाशी के लिए सबसे बड़ा विश्वासघात था, सिस्टम का विश्वासघात।
और जब सालों बाद वो छूटता है,
वो एक टूटा हुआ आदमी है, बदला लेना चाहता है। नहीं, बदला नहीं, बस कैथरीन तक वापस पहुंचना चाहता है।
इसके लिए वो जर्मनों से सौदा करता है, उन्हें रेगिस्तान के नक्शे देता है ईंधन के बदले।
हाँ, ताकि वो उड़कर गुफा तक जा सके। और जब वो पहुंचता है, कैथरीन जा चुकी है।
वो उसके शरीर को एक पुराने विमान में रखता है, उसे लेकर उड़ना चाहता है।
लेकिन विमान में आग लग जाती है, वो क्रैश हो जाता है और अलमाशी बुरी तरह जल जाता है।
और इस तरह वो बन जाता है द इंग्लिश पेशेंट, जिसे हाना मिलती है वीला में।
कार्यवाहियों का शक शायद यहीं से जुड़ता है कि अलमाशी के जर्मनों के साथ सहयोग की वजह से ही शायद उसे पकड़ा गया था।
क्या कहानी है, कितना दर्द, कितना घुमाव।
तो ये सब यादें वीला में धीरे धीरे सामने आती हैं। और लगता है कि शायद अब इन किरदारों को कुछ शांति मिलेगी। लेकिन तभी
बाहर की दुनिया से एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो सब कुछ बदल देती है।
अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए हैं।
हजारों, लाखों जाने एक पल में खत्म।
ये खबर किप के लिए एक धमाके की तरह है। उसके अंदर कुछ टूट जाता है।
उसे ये पश्चिमी दुनिया का असली चेहरा लगता है, बर्बरता, नस्लवाद, पाखंड।
वो जिस ब्रिटिश झंडे के लिए लड़ रहा था, बम डिफ्यूज कर रहा था, उसी पश्चिमी ताकत ने ये किया। उसका सारा भरोसा, उसकी वफादारी, हाना के लिए उसका प्यार, सब बेकार लगने लगता है।
वो गुस्से में अंग्रेजी मरीज से लड़ पड़ता है, जिसे वो उस पूरी सभ्यता का प्रतीक मानने लगता है।
हाँ, वो लगभग उसे मार ही डालता है। वो नफरत, वो गुस्सा बहुत तीव्र है उस क्षण में।
और फिर?
फिर किप सब छोड़ देता है। वीला, हाना, वो अधूरा इश्क सब पीछे छोड़कर चला जाता है, हमेशा के लिए।
लौटता है, डॉक्टर बनता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं। लेकिन कहते हैं, वीला की यादें, हाना की याद उसे कभी नहीं छोड़ती।
किप का जाना बहुत कुछ कह जाता है युद्ध के असर के बारे में, पहचान के संकट के बारे में।
हाँ, और कहानी के अंत में अपनी दास्तान पूरी करने के बाद अलमाशी भी दम तोड़ देता है, शांति से।
उसकी कहानी कह दी गई, शायद यही उसकी मुक्ति थी।
हाना भी वीला छोड़ने का फैसला करती है, कनाडा वापस जाने का, शायद एक नई शुरुआत के लिए।
और कारावेगियो?
कारावेगियो लगता है वो बदले का इरादा छोड़ देता है। मरीज की कहानी सुनकर शायद उसे कुछ समझ आ गया हो, शांति मिल गई हो।
तो ये उपन्यास हमें बहुत से विषयों पर सोचने को मजबूर करता है। एक तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा।
बिल्कुल, अलमाशी की वो नफरत देशों के लिए, आई हेट कंट्रीज, रेगिस्तान का वो प्रतीक जहां कोई सरहद नहीं, और कैसे इंसानी सरहदें जानलेवा साबित होती हैं।
किप का मोहभंग भी इसी से जुड़ा है, साम्राज्यवाद, नस्लवाद।
हाँ, ओंडाची दिखाते हैं कि पहचान किसी देश की मोहताज नहीं, वो अनुभवों से, रिश्तों से, यादों से बनती है। जैसे अलमाशी कहता है, वी डाई कंटेनिंग अ रिचनेस, हम अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए मरते हैं।
और ये पहचान यादों और कहानी कहने से कितनी जुड़ी है। मरीज कहानी सुनाकर ही अपनी पहचान पाता है।
और वो हेरोडोटस की किताब, इतिहास जैसे व्यक्तिगत कहानियों का संग्रह हो।
फिर प्रेम का विषय, अलमाशी और कैथरीन का प्रेम, जुनून की हद तक सर्वग्रासी।
हाँ, लेकिन क्या वो अधिकार जताने वाला प्रेम बन जाता है? विनाशकारी। इसकी तुलना हम हाना और किप के रिश्ते से कर सकते हैं, जो ज्यादा कोमल था।
ओंडाची जैसे पूछते हैं, क्या हम किसी और के दिल को पूरी तरह जान सकते हैं? शायद नहीं। दूसरे का दिल एक अंधेरा जंगल है।
सही। और आघात और उपचार का थीम तो है ही। हर किरदार जख्मी है, युद्ध का, नुकसान का, धोखे का।
वीला उनके लिए एक मरहम की तरह काम करता है। हमदर्दी, कला, इंसानियत, इनसे उपचार शुरू होता है।
लेकिन किप का जाना दिखाता है कि ये उपचार कितना नाजुक है, बाहरी दुनिया की सच्चाइयां उसे तोड़ सकती हैं।
और युद्ध की नैतिक अस्पष्टता, यहाँ कोई साफ तौर पे सही या गलत नहीं है।
बिल्कुल। अलमाशी का प्रेम के लिए देश से गद्दारी करना,
काराविज्ञों की जासूसी,
किप का एक ऐसी सेना में होना जो उसके अपने लोगों पर भी हुकूमत करती है। युद्ध आपको ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां नैतिक चुनाव मुश्किल हो जाते हैं।
और उपनिवेशवाद का मुद्दा जो किप के जरिए उभरता है। परमाणु बम पर उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ हिंसा के खिलाफ नहीं, उस नस्लवादी सोच के खिलाफ भी है।
हाँ, कि वो कैसे गैर पश्चिमी जीवन को कम आंकते हैं। किप का वो कहना कि कोई मूल निवासी या विदेशी नहीं होता, सब इंसान होते हैं।
ओंडाची की लिखने की शैली, वो भी अपने आप में एक अनुभव है, खंडित टुकड़ों में यादों की तरह।
और भाषा इतनी संवेदी, आप रेगिस्तान की गर्मी, वीला का ठंडापन सब महसूस कर सकते हैं। काव्यात्मक गद्य जिसे कहते हैं।
प्रतीक भरे पड़े हैं, रेगिस्तान, वीला, बम, हेरोडोटस, हर चीज के कई मायने हैं।
और कहानी एक नहीं कई नजरियों से कही गई है। पाठक को इन धागों को जोड़ना पड़ता है। ये पाठक से मेहनत करवाती है किताब।
सच में ये उपन्यास हमें चुनौती देता है कि हम पहचान, वफादारी, प्रेम, इन सब के बारे में अपनी बनी बनाई धारणाओं पर सवाल करें।
और ये याद दिलाता है कि युद्ध की असली कीमत लड़ाइयां खत्म होने के बाद भी दिलों में छुपे जख्मों की शक्ल में बहुत लंबे समय तक चुकाई जाती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।